अस्सलामुअलैकुम। आज जुमा है, फरवरी की 24 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आगाज़ करते हैं यूक्रेन रूस तनाज़े से, जिसको आज 1 साल मुकम्मल हो रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जुमे को उन कहा है कि उनकी कौम रूस के खिलाफ फतहयाब होगी। उन्होंने कहा कि हमने बर्दाश्त किया, हम हारे नहीं, और हम इस साल फतह हासिल करने के लिए सब कुछ करेंगे। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि यूक्रेन ने दुनिया को मुतासिर किया है, यूक्रेन ने दुनिया को मुत्तहिद कर दिया है। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया जब उनके पड़ोसी मुल्क के साथ जंग दूसरे साल में दाखिल हो गई है, जिसका कोई बज़ाहिर खात्मा नजर नहीं आ रहा है। उधर ग्रुप ऑफ 7 के रहनुमाओं की मुलाकात जुम्मे को हो रही है, जिसमें रूस की जंगी कोशिशों में मदद करने वालों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने जुम्मे को कहा कि वो बैंकिंग, कानकनी और दिफाई शोबों के साथ साथ 200 से ज्यादा अफराद और इदारों को निशाना बनाने वाली नई पाबंदियां आयद कर रहा है, जिनमें रूस और यूरोप, एशिया और मशरिक वस्ता में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो रूस की जंग की हिमायत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने जुमे को यूक्रेन के लिए $2 बिलियन की इजाफी इमदाद का ऐलान किया। खासतौर पर अमरीका बगैर पायलट के फजाई निजाम UAS और इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के साथ साथ तोपखाने और दुरुस्त फायर करने की सलाहियतों के लिए गोला बारूद फराहम कर रहा है, जो रूसी जारियत को पसपा करने के लिए यूक्रेन की सलाहियत को मजबूत करेगा। व्हाइट हाउस ने एक बयान में बताया कि अक्वामे मुत्तहिदा ने जुमेरात को एक करारदाद मंजूर की, जिसमें यूक्रेन से रूसी अफवाज के फौरी और गैर मशरूत इनखिला का मुतालबा किया गया है। इसी दौरान चीन ने जुमे को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी और अमन मुजाकरात शुरू करने का मुतालबा किया। ये 12 निकाती उस तजवीज का हिस्सा था जिसमें रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों के खात्मे पर जोर दिया गया है। इसके अलावा शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को रोकने, जौहरी तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने और इंसानी इमदाद की तरसील के लिए राहदारी कायम करने के लिए इकदाम तजवीज किए गए हैं। चीन ने तनाज़े में गैर जानबदार रहने की कोशिश की है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले पर तनकीद करने से इनकार कर दिया है। ये सिफारती इकदाम ऐसे वक्त में किए जा रहे हैं जब मशरिकी यूक्रेन में लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने जुमेरात को कहा कि उसने मशरिकी और जनूबी यूक्रेन में लड़ाई की फ्रंट लाइन पर रूसी पेशकदमी की कोशिशों को पसपा कर दिया है, जिससे मॉस्को के यूक्रेन पर हमले की पहली बरसी से एक दिन कबल जंग बेनतीजा साबित हो गई है। रूस यूक्रेन के तकरीबन 5वें हिस्से पर काबिज है। ये रकबा उससे कहीं कम है जिसकी पेशगोई 1 साल कबल यूक्रेन के मशरिकी हिस्से में रूसी टैंकों के दाखिल होते वक्त फौजी तजिया कारों ने की थी। ताज़ातरीन लड़ाई में मॉस्को की अफवाज ने पेशकदमी करते हुए बाखमूत को घेरे में लेने की कोशिश की। यूक्रेन के फौजी तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी ग्रोमोफ ने कहा कि मॉस्को अपनी अफरादी कुव्वत को कीव की अफवाज को थकाने और कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुश्मन बड़े पैमाने पर नुकसानात उठाने के बावजूद बाखमूत को मुहासरे में लेने की कोशिशें तर्क नहीं कर रहा। अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जुमेरात को एक करारदाद की भारी अक्सरियत से हिमायत की, जिसमें यूक्रेन में अक़्वामे मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों के मुताबिक जल्द अज जल्द एक जामे मुनसिफाना और देरपा अमन का मुतालबा किया गया। यूक्रेन के पेशकर्दा मतन की हिमायत के हक में 141, मुखालिफत में 7 वोट आए, जबकि 32 गैर हाजिर रहे। करारदाद में अमन की अहमियत पर जोर दिया गया था, और उसने असेंबली के इस मुतालबे का भी यह अदा किया कि रूस फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर और गैर मशरू तौर पर अपने तमाम फौजी दस्तों को यूक्रेन की सरजमीन से बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा अपनी सरहदों के अंदर वापस बुला ले और दुश्मनी खत्म करें। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का खसूसी हंगामी इजलास जो बुध को शुरू हुआ और वोटिंग के साथ जुमेरात तक जारी रहा, रूस के हमले का एक साल मुकम्मल होने पर बुलाया गया था। यूक्रेन के वजीर खारजा देमित्रो कोलिबा ने आलमी बरादरी से अपने मुल्क के साथ खड़े रहने की अपील की। कोलिबा ने वोटिंग के बाद सहाफियों को बताया कि आज का वोट एक और सबूत है कि यह सिर्फ मगरबी नहीं जो यूक्रेन की हिमायत करता है, इसकी हिमायत बहुत वसी है और ये मजीद मजबूत और मुस्तहकम होती रहेगी। इस बहस में रूस समेत 75 ममालिक ने हिस्सा लिया। रूसी सफीर वैसली नेबेनिसिया ने ममालिक पर जोर दिया कि वो करारदाद के मुसवदे के खिलाफ वोट दें। उनका कहना था कि यह हकीकत से अलग है। मॉस्को के इत्तेहादी बेलारूस ने मतन में दो तरामीम की तजवीज पेश की, एक में यूक्रेन पर मुकम्मल हमले और रूसी फेडरेशन की तरफ से जारहियत के अल्फाज को छोड़कर और दूसरी में रियासतों से तनाज़े वाले इलाके में हथियार भेजने से बाज रहने का मुतालबा किया गया है, लेकिन उन्हें असम्बली ने यकसर मुस्तरद कर दिया। नेबेनिसिया ने इसरार किया कि मॉस्को अमन की राह में रुकावट नहीं है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबरा जोसेफ बोरेल ने कहा कि रूस ने पूरा हफ्ता अक्वामे मुत्तहिदा की तवज्जो हटाने और उसमें खलल डालने की कोशिश की है। और आइए अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दुनिया भर से खबरें पेश करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF के साथ माहदे को कामयाब बनाने की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान का मरकजी बैंक मुल्क में शरे सूद में मजीद 2% इजाफा कर सकता है, जो पहले ही मुल्क की तारीख की बुलंद सतह यानी 17% पर मौजूद है। मुतादिद तजियाकारों के मुताबिक पॉलिसी रेट यानी शरे सूद में इजाफे के जरिए मुल्क में बढ़ती हुई अफराती ज़र को कंट्रोल करना मुश्किल नजर आता है। उनका इसरार है कि पाकिस्तान की बड़ी हद तक गैर दस्तावेजी मईशत का ढांचा जाहिर करता है कि 27% से ज्यादा की मौजूदा अफराती ज़र तलब नहीं बल्कि रसद में रुकावटों का नतीजा है, जिसकी वजह से अशिया महंगी हो रही हैं और इस महंगाई को शरे सूद बढ़ाकर ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। दूसरी जानब स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी मंदी का रुझान नजर आया और कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मार्केट में 130 पॉइंट्स की कमी देखी गई, क्योंकि सरमायाकार इस बात से वाकिफ हैं कि स्टेट बैंक IMF के साथ माहदे को हतमी शक्ल देने से पहले एक या दो दिन में पॉलिसी रेट में बड़ा इजाफा कर सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अस खुद नोटिस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून, जमियत उलमाए इस्लाम फे और पाकिस्तान बार काउंसिल ने बेंच में शामिल दो जजेस पर एतराज उठा दिए हैं। अदालत में पेशकर्दा दरख्वास्त में तीनों जमातों का कहना है कि इंतखाबात के मामले पर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी की राय पहले ही सामने आ गई है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के नोट के मुताबिक इंसाफ के तकाजों और फेयर ट्रायल के लिए दो जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजाहिर अली अकबर नकवी नून लीग, PPP और JUI का कोई केस न सुने। समाअत के दौरान बेंच के सरबरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक मौके पर कहा कि आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत में आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बार आईन ने दरवाजा खटखटाया है। JUI के वकील और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने समाअत के बाद वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि इस केस में अगरचे जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने फुल कोर्ट बनाने की बात की है, ताहम मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अदलिया की मौजूदा सूरत हाल एक मुश्किल सूरत हाल है और इसमें जजेस को खुद से माहौल को बेहतर बनाना होगा। अफगानिस्तान के साथ मसरूफ तरीन सरहदी गुजरगाह तोरखम को पाकिस्तानी हुकाम ने लगभग 6 रोज की बंदिश के बाद पैदल आने जाने वालों के लिए जुम्मे के सुपहर खोलने का ऐलान कर दिया, ताहम दो तरफा तिजारत और दीगर माशी सरगर्मियों के लिए सरहदी गुजरगाह बदस्तूर बंद है। तुर्खम में सरकारी अहदेदारों ने बताया है कि सरहदी गुजरगाह पाकिस्तान में फंसे हुए या वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों और अफगानिस्तान में रुके हुए या अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आने वालों के लिए खोल दिया गया है। इस फैसले के तहत न तो किसी पाकिस्तानी बाशिंदे को अफगानिस्तान और न किसी पाकिस्तानी बाशिंदों को तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान दाखिल होने की इजाज़त होगी। अफगानिस्तान में बरसर इख्तदार तालिबान अहदेदारों ने इतवार के रोज़ पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकारों की अफगान बाशिंदों के साथ नफरत आमेज रवैयों के इल्ज़ाम लगाकर सरहदी गुजरगाह को हर किस्म की आमदरफ्त और दोतरफा तजारत के लिए बंद कर दिया था। बुध के रोज़ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक आला सतही वफ्द के दौरे काबुल और रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात के बाद अफगान हुकाम ने तोरखम को जुमेरात के सुबह खोलने का ऐलान किया था, मगर पाकिस्तानी हुकाम ऐलानात के बावजूद ऐसा न कर सके। तजियाकारों का मौकिफ है कि बुध के रोज़ होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तानी हुकाम अफगानिस्तान में रूपोश अस्करीत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने पर तालिबान की जानिब से कोई मुस्बत जवाब न मिलने पर मायूस दिखाई दे रहे हैं। तालिबान हुकूमत की वजारत सनत व तजारत के एक अहदेदार का कहना है कि रूस, ईरान और पाकिस्तान के ताजरों के कंसोर्शियम के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए जाएंगे जो $1 बिलियन की इब्तदाई सरमायाकारी से बुनियादी ढांचे के 4 मनसूबों की तामीर से मुतालिक होंगे। वजारत के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि 14 अफगान सरमायाकारों का एक ग्रुप भी इन 3 ममालिक के ताजरों में शामिल है। तालिबान के कायम मकाम वजीर बराए सनत व तजारत नूरुद्दीन अजीजी ने रॉयटर्स को बताया कि बिजली और कानकनी के मनसूबों के अलावा कंसोर्शियम सालानांग में एक दूसरी सुरंग के इम्कान का जायजा लेगा जो अफगानिस्तान के शिमाल को मुल्क के दूसरे हिस्सों से मिलाती है। पंजशेर से काबुल तक पानी की मुंतकली और काबुल हेरात हाईवे की तामीर नौ भी इन मनसूबों में शामिल है। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर अक़वामे मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट ने एक ट्वीट में तालिबान पर जोर दिया है कि वो ख़वातीन के हकूक की कारकुन नरगिस सादात और इंसानी हकूक के लिए कोशां दूसरे अफगान कारकुनों को रिहा करते हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा कि वो तालिबान हुकाम की जानिब से जबरी हिरासत में लिए गए सिविल कारकुनों नरगिस सादात, जकरिया ओसोली, इब्राहिम मशाल और दीगर की फौरी गैर मशरूत रिहाई के लिए अपनी अपील को दोहराते हैं और उनकी हिफाजत और बहबूद की यकीन दहानी की दरख्वास्त करते हैं। अमरीकी महकमा दिफा ने ऐलान किया है कि क्यूबा में कायम हिरासती मरकज ग्वांटानामो बे में 20 बरस तक कैद रहने के बाद 2 पाकिस्तानी भाइयों को वापस उनके मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है। अब्दुल रब्बानी और मोहम्मद रब्बानी नामी इन दोनों भाइयों को सन 2002 में कराची से हिरासत में लिया गया था, जिन्हें बाद अफगानिस्तान में अमरीकी हुकाम के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद सन 2004 में उन्हें ग्वांटानामो बे मुंतकिल किया गया। दोनों भाइयों पर 11 सितंबर सन 2001 के हमले के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने और पाकिस्तान में अलकायदा के मुश्तबा दहशतगर्दों को महफूज ठिकाने फराहम करने का इल्ज़ाम था। तहम 2 दहाइयों के दौरान उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई थी। ईरान ने अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के तहत यूरेनियम की 84% खालिस अफसूदगी की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सिविलियन जौहरी प्रोग्राम के तर्जुमान बहरूस कमालवंदी का कहना है कि ईरान सिर्फ 60% खालिस यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत रखता है। हाल ही में नशियाती इदारे ब्लूम्सबर्ग ने जौहरी इंस्पेक्टर्स के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ईरान 84% खालिस यूरेनियम अफजूदा करने की सलाहियत पैदा कर चुका है। जौहरी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA ने इस रिपोर्ट की तरदीद नहीं की थी। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक इस रिपोर्ट को एक साजिश करार दिया है। तुर्की की फोर्सेज ने दावा किया है कि शिमाली शाम में एक ऑपरेशन के दौरान इस्तांबुल के इस्तिकलाल एवेन्यू धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया है। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक इंटेलिजेंस अहलकारों ने शिमाली शाम के शहर कामशली में एक ऑपरेशन किया। इस दौरान मुबैना मास्टरमाइंड हलील मेंसी हलाक हो गया। गुज़श्ता बरस 13 नवंबर को इस्तांबुल के मशहूर सियाहती मकाम इस्तिकलाल एवेन्यू पर एक बम धमाके में 2 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हो गए थे। वाकई में 80 अफराद जख्मी भी हुए थे। तुर्की के हुकाम ने इस हमले का इल्ज़ाम कलदम तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी समेत شامی کردش گروہوں پر عائد کیا تھا۔ تاہم کردش عسکریت پسندوں نے اس کی تردید کی تھی۔ روس نے 3 خلا نوردوں کی عالمی اسپیس اسٹیشن سے بحفاظت واپسی کے لیے اسپیس کرافٹ روانہ کر دیا ہے۔ ان خلا نوردوں میں 2 روسیوں کے ساتھ امریکی خلائی ادارے ناسا کے 1 آسٹرونوٹ بھی شامل ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں ان خلا نوردوں کے اسپیس کرافٹ سے چھوٹے چھوٹے شہابیے ٹکرا گئے تھے، جس کی وجہ سے اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ اس خرابی کے بعد یہ اسپیس کرافٹ عالمی خلائی اسٹیشن پر پارک کر دیا گیا تھا۔ جمعے کو روس نے ان خلا نوردوں کو واپس لانے کے لیے قازقستان سے خالی اسپیس ایئر کرافٹ خلا میں روانہ کیا، جو اتوار تک عالمی خلائی اسٹیشن تک پہنچ جائے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔